एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि इतिहास के एक तूफानी दौर को जैसे महसूस करा देती है।
हाँ बिल्कुल, ये किताब है स्कॉटलैंड के मशहूर इतिहासकार और विचारक थॉमस कार्लाइल की द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री। 1837 में छपी थी, पर इसकी बातें आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं।
सही कहा। और आज जब हम दुनिया में इतनी उथल पुथल देखते हैं ना,
हाँ
चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक,
हाँ
तब फ्रांसीसी क्रांति जैसी बड़ी घटना को समझना शायद पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। ये हमें क्या सिखा सकती है कि समाज कैसे बदलते हैं, पुरानी व्यवस्थाएं क्यों ढह जाती हैं, और इन बदलावों की इंसानी कीमत क्या होती है?
और कार्लाइल का नज़रिया इसे और भी खास बना देता है। वो सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं देते, उनके लिए तो फ्रांसीसी क्रांति एक नैतिक कहानी थी, सच्चाई और दिखावे के बीच, सही और गलत के बीच एक जबरदस्त टकराव।
अच्छा,
तो चलिए इस दिलचस्प किताब की गहराइयों में उतरते हैं और कार्लाइल के नज़रिए से इस क्रांति को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ज़रा लेखक के बारे में जान लेते हैं। थॉमस कार्लाइल ये 1795 से 1881 तक रहे, विक्टोरियन ब्रिटेन के एक बड़े प्रभावशाली विचारक थे, पर मतलब थोड़े हटके भी थे।
हटके कैसे?
मतलब वो कोई आम इतिहासकार नहीं थे जो सिर्फ तारीखें और तथ्य बताएं। उन्हें इतिहास के पीछे छुपी जो बड़ी नैतिक ताकतें हैं, जो सच्चाइयां हैं, उनमें ज्यादा रुचि थी।
और उनका लिखने का अंदाज, सुना है उसे कार्लाइज़े कहते हैं, बड़ा जोशीला, रूपकों से भरा हुआ।
बिल्कुल, और एकदम नाटकीय।
हाँ, जैसे वो अक्सर वर्तमान का प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, मानो पढ़ने वाला खुद उस घटना के बीच में खड़ा हो। उनकी स्कॉटिश धार्मिक परवरिश और जर्मन फलसफे के अध्ययन ने उन्हें इतिहास को देखने का एक अलग ही चश्मा दिया था।
सही,
वो इतिहास को जैसे ईश्वर की मर्जी और इंसानी सच्चाइयों को दिखाने वाला एक बड़ा नाटक मानते थे।
और उनकी लगन का एक किस्सा तो कमाल का है। पता है क्या हुआ था?
बताइए।
कहते हैं जब उन्होंने पहली वॉल्यूम का हाथ से लिखा मसौदा पूरा करके अपने दोस्त जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ने दिया,
हाँ,
तो मिल की नौकरानी ने गलती से उसे रद्दी समझकर आग में झोंक दिया।
अरे बाप रे, मतलब पूरी मेहनत, राख, सोचकर ही डर लगता है।
हाँ, लेकिन कार्लाइल ने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं उन्होंने पूरी वॉल्यूम सिर्फ अपनी याददाश्त और कुछ बचे खुचे नोट्स के सहारे दोबारा लिख डाली।
कमाल है, शायद इसीलिए इस किताब में वो एक अजीब सी आग, एक जज्बाती शिद्दत महसूस होती है, जैसे लेखक ने इसे सिर्फ लिखा नहीं बल्कि जिया हो।
बिल्कुल, और हाँ ये भी था कि फ्रांसीसी भाषा के स्रोतों तक उनकी सीधी पहुंच थी, जो उस समय के कई ब्रिटिश इतिहासकारों के पास नहीं थी।
तो अब आते हैं किताब पर। आखिर ये किताब है क्या? ये फ्रांसीसी क्रांति का एक बहुत फैला हुआ, नज़ारों से भरा ब्यौरा है। मतलब उस पुराने जर्जर हो चुके फ्रांसीसी राज, जिसे एंशंट रिजीम कहते हैं,
जा एंशंट रिजीम।
उसके आखिरी दिनों से शुरू होकर क्रांति की शुरुआती उम्मीदों, फिर उसके खूनी दौर यानी आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर, और आखिर में नेपोलियन बोनापार्ट के उभरने तक, सब कुछ इसमें शामिल है।
लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। कार्लाइल का जो मुख्य तर्क है वो ये कि क्रांति कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं थी। ये तो सदियों से चले आ रहे अन्याय, भ्रष्टाचार, नैतिक खोखलेपन और खासकर फ्रांस के ऊंचे तबके और राजशाही के दिखावेपन का एक जरूरी विस्फोटक नतीजा थी।
दिखावेपन का?
हाँ, कार्लाइल इस पुरानी व्यवस्था को शैम कहते हैं, यानी एक ऐसा दिखावा जो सच्चाई और इंसाफ से कोसों दूर था।
तो कार्लाइल कह रहे थे कि ये पूरी व्यवस्था सिर्फ एक दिखावा थी, एक शाम। इसका मतलब लेजिटिमेसी सिर्फ नाम या परंपरा से नहीं आती, बल्कि असलियत से जुड़े रहने से आती है। क्या ये आज भी सच नहीं लगता?
बिल्कुल,
उनके लिए क्रांति एक भयानक उथल पुथल मचाने वाली, लेकिन जरूरी शुद्ध करने वाली आग की तरह थी, जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो जिसने सारे झूठे रिवाज, झूठी मान्यताओं और झूठे शासकों को बहा दिया।
हाँ, किताब यही सवाल उठाती है कि तब क्या होता है जब समाज के कर्ता धर्ता और उनकी मान्यताएं जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट जाते हैं। और कार्लाइल का जवाब सीधा है, तब असलियत, जो अक्सर आम लोगों के गुस्से और अराजकता के रूप में सामने आती है, उन सब चीजों को मिटाने के लिए एक बेकाबू ताकत बनकर उभरती है, जो अब नकली है या जीने लायक नहीं है।
वो पढ़ने वाले को सिर्फ बाहर से देखने वाला नहीं बनाते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जैसे पेरिस की सड़कों पर खड़ा करके उस अफरा तफरी, उस उम्मीद और उस खौफ को महसूस करवाते हैं।
कार्लाइल ने इस बड़ी कहानी को तीन हिस्सों या वॉल्यूम में बांटा है, द बैस्टिल, द कॉन्स्टिट्यूशन और द गिलोटिन। चलिए इन हिस्सों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है।
ठीक है, तो पहला हिस्सा द बैस्टिल, ये 1774 से 1789 तक का समय देखता है। ये पुराने राज के ढहने की कहानी है। शुरुआत होती है राजा लुई 15 की मौत से, जिसे कार्लाइल एक भ्रष्ट और नैतिक रूप से कंगाल हो चुकी राजशाही के अंत के तौर पर देखते हैं।
और फिर?
फिर आते हैं लुई 16 और मैरी एंटोनेट। कार्लाइल उन्हें मतलब बुरा इंसान नहीं मानते, बल्कि कमज़ोर और हालात संभालने में बिल्कुल नाकाम शासक मानते हैं, जिन्हें विरासत में ही एक मुश्किल स्थिति मिली थी।
इस हिस्से में कार्लाइल बताते हैं कि कैसे पैसों का संकट गहराता गया, विदेशों में लड़ी लड़ाइयों का भारी कर्ज, टैक्स का ऐसा निज़ाम जिसमें सारा बोझ आम लोगों पर था और अमीर और पादरी लगभग टैक्स फ्री थे।
हाँ, और कैसे ऊंचा तबका किसी भी सुधार को होने ही नहीं दे रहा था। जैक स्नेकन जैसे वित्त मंत्री कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं।
फिर आता है 1789 का वो साल जब एस्टेट्स जनरल बुलाई जाती है। ये एक तरह की पुरानी संसद थी जिसे लगभग पौने 200 साल से बुलाया नहीं गया था।
अरे हाँ, यहीं से चिंगारी भड़कती है।
तीसरा एस्टेट यानी आम लोगों के प्रतिनिधि खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं और वो मशहूर टेनिस कोर्ट की शपथ लेते हैं कि फ्रांस के लिए संविधान बनाए बिना हटेंगे नहीं।
और ये पहला वॉल्यूम अपने चरम पर पहुंचता है 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले जेल के पतन के साथ। बास्तील राजा के जुल्म का निशान था।
हाँ, और कार्लाइल इसे जनता की ताकत से इस निशान के मिटने के एक ऐतिहासिक पल की तरह दिखाते हैं। यहाँ से अराजकता खुलकर सामने आ जाती है।
तो ये थी पुराने शासन की पृष्ठभूमि और क्रांति की शुरुआत। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या संविधान बन पाया? वो उम्मीदों का क्या हुआ? यहीं से कहानी और पेचीदा होती है। दूसरा वॉल्यूम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1789 से 1792 तक का दौर है। ये उम्मीदों और कोशिशों का समय था जब एक संवैधानिक राजशाही मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने की कोशिश हुई।
अच्छा, तो कोशिश तो हुई।
हाँ, अगस्त 1789 में सामंतवाद फ्यूडलिज्म खत्म किया गया, इंसानी हकों का ऐलान डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन हुआ। ये सब बड़ी उपलब्धियां थीं। कार्लाइल इन्हें क्रांति के शुरुआती वादों को पूरा करने वाले कदमों की तरह देखते हैं।
लेकिन ये दौर आसान नहीं था, है ना? कट्टरता भी बढ़ रही थी, वो जैकोबिन जैसे राजनीतिक क्लब ज्यादा ताकतवर हो रहे थे।
बिल्कुल, पैसों की तंगी बनी हुई थी और फिर फ्रांस का पड़ोसी देशों से युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा। और यही कार्लाइल हमें क्रांति के कुछ मुख्य किरदारों से मिलाते हैं जो उनकी महान व्यक्ति वाली सोच को दर्शाते हैं।
जैसे कौन?
जैसे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जिसे वो अड्डे इनकरप्टेबल तो मानते हैं पर उसकी कठोर आदर्शवादिता के खतरे भी दिखाते हैं।
जॉर्जेस दांते हैं, एक जोरदार जोशीला वक्ता।
ज्या पॉल मरात, एक कट्टर पत्रकार जिसकी कलम जहर उगलती थी। और मिराबो, एक समझदार नेता जिसकी जल्दी मौत को कार्लाइल क्रांति के लिए एक बड़ा नुकसान मानते हैं।
मिराबो की मौत, हाँ, वो एक अहम मोड़ था।
और फिर अप्रैल 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के खिलाफ जंग का ऐलान एक खतरनाक मोड़ साबित हुआ, जिसने क्रांति को और ज्यादा हिंसक और कट्टर बना दिया। लेकिन शायद सबसे बड़ा झटका लगा जून 1791 में,
जब राजा लुई 16 ने परिवार समेत वेरेंस भागने की नाकाम कोशिश की।
हाँ, जब राजा और रानी भेष बदलकर देश से भागते हुए पकड़े गए तो लोगों का राजशाही पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी खत्म हो गया। इस घटना ने कट्टरपंथियों को बहुत मजबूत किया और संवैधानिक राजशाही का सपना लगभग टूट गया।
और फिर आता है तीसरा और आखिरी वॉल्यूम, द गिलिटन। 1792 से 1795 तक का ये सबसे भयानक दौर है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गिलिटीन।
हाँ, ये उस मशीन से सर कलम करने का आतंक और मौत का समय है। इसकी शुरुआत होती है सितंबर 1792 के नरसंहार से। पेरिस में युद्ध और जवाबी क्रांति के डर से पागल हुई भीड़ जेलों में घुल जाती है और हजारों कैदियों को, जिनमें कई पादरी और कुलीन लोग थे, बेरहमी से मार डालती है। कार्लाइल इसे डर और शक से पैदा हुई वहशी जंगली अराजकता के तौर पर दिखाते हैं।
इसके फौरन बाद राजशाही को खत्म कर दिया जाता है और फ्रांस एक गणतंत्र बन जाता है। फिर आता है राजा लुईस 16 पर मुकदमा और जनवरी 1793 में उसे फांसी।
कार्लाइल इसे एक जरूरी कदम मानते हैं, लेकिन ये भी दिखाते हैं कि कैसे इस एक घटना ने फ्रांस को उसके हजारों साल के इतिहास से काट दिया और सुलह के सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसने कट्टरपंथी जैकोबिन्स, खासकर रॉबेस्पियर के गुट जिसे माउंटेन कहते थे, को और ताकतवर बना दिया।
इसके बाद शुरू होता है वो दौर जिसे आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर कहते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा समिति, जिसकी कमान असल में रॉबेस्पियर के हाथ में थी,
हाँ वही समिति,
वो एक व्यवस्थित आतंक के जरिए हुकूमत करती है। गिलोटिन है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती।
बिल्कुल,
न सिर्फ पुराने दुश्मन बल्कि वो क्रांतिकारी भी मारे जाते हैं जो जैकोबिन लाइन से जरा भी हटते हैं। ये सोचना ही भयानक है।
बिल्कुल,
क्या कार्लाइल समझाते हैं कि आम लोग इस हद तक हिंसा का समर्थन क्यों करने लगे थे?
कार्लाइल दिखाते हैं कि ये डर, शक, बाहरी युद्ध का खतरा और एक तरह के आदर्शवादी जुनून का मिलाजुला नतीजा था। रॉबेस्पियर और उसके साथी मानते थे कि क्रांति को बचाने के लिए दुश्मनों को खत्म करना जरूरी है, चाहे वो असली हों या शक के आधार पर।
यहाँ तक कि दांतेन जैसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता,
हाँ दांतेन भी, जिन्होंने आतंक को कम करने की बात कही, उन्हें भी देशद्रोही कहकर गिलियोटिन पर चढ़ा दिया गया। और रॉबेस्पियर का वो सर्वोच्च सत्ता का पंथ, कल्ट ऑफ द सुप्रीम बींग स्थापित करने का अजीब सा प्रयास,
हाँ वो तो बहुत ही अजीब था,
जिसमें वो ईसाई धर्म की जगह एक तर्क पर आधारित नया धर्म लाना चाहते थे। कार्लाइल के लिए ये खोखली और जमीनी हकीकत से कटी विचारधारा का चरम था।
आखिर में ये आतंक इतना बढ़ जाता है कि क्रांति अपने बच्चों को खाने लगती है। जैसा कहते हैं थर्मिडोर, यानी जुलाई 1794 के महीने में नेशनल कन्वेंशन में ही रॉबेस्पियर के खिलाफ एक गुट बनता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है
और अगले ही दिन उसे भी गिलियोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। आतंक का राज खत्म होता है।
लेकिन अफरा तफरी खत्म नहीं होती,
है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कमजोर, अस्थिर सरकार आती है जिसे डायरेक्टरी कहते हैं। ये दौर तब तक चलता है जब तक अक्टूबर 1975 में, जिसे फ्रांसीसी कैलेंडर में वेंडिमियर का महीना कहते हैं, पेरिस में राजशाही समर्थकों के विद्रोह को एक नौजवान तोपखाने का अफसर बेरहमी से कुचल नहीं देता।
और वो था नेपोलियन बोनापार्ट।
हाँ, कार्लाइल के लिए ये तोप के छर्रों की गंध क्रांति के उस अराजक भीड़ वाले दौर का अंत है। अब व्यवस्था तलवार के जोर पर कायम होगी। भीड़ की ताकत को एक महान व्यक्ति ने काबू कर लिया है।
वाह, क्या जबरदस्त और भयानक कहानी है। तो इस पूरी उथल-पुथल भरी कहानी से कार्लाइल हमें क्या सिखाना चाहते हैं? उनके मुख्य संदेश क्या हैं? मतलब निचोड़ क्या है?
मेरे ख्याल से पहला और शायद सबसे अहम सबक है सच्चाई बनाम दिखावा का, सिंसियरिटी वर्सेस शैम। कार्लाइल का पक्का मानना था कि पुराना फ्रांसीसी राज पूरी तरह खोखला हो चुका था, सिर्फ दिखावटी रस्मों, झूठे दावों और नाइंसाफी पर टिका था। क्रांति असलियत की एक हिंसक वापसी थी। आम लोगों की भूख, उनका गुस्सा, उनकी तकलीफें, ये सब असली थे। कार्लाइल का ये विचार आज भी कितना मौजू है ना? जब हम देखते हैं कि कैसे संस्थाएं या नेता जनता का भरोसा खो देते हैं जब वो सच्चाई से दूर हो जाते हैं।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा विचार है ऐतिहासिक न्याय की अनिवार्यता, इनेविटेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल जस्टिस। कार्लाइल क्रांति को सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं मानते, बल्कि सदियों के अन्याय का एक तरह का ईश्वरीय या कुदरती बदला मानते हैं।
जैसे कर्मों का फल?
हाँ, कुछ वैसा ही। यह हमें याद दिलाता है कि सामाजिक अन्याय को लंबे समय तक नजरअंदाज करने के कितने गंभीर और अक्सर हिंसक नतीजे हो सकते हैं। जैसे अपने देश भारत में ही देखें तो लंबे समय से चली आ रही असमानता या नाइंसाफी कभी कभी विस्फोटक हालात पैदा कर सकती है।
सही बात है। तीसरा, जनता की ताकत बनाम स्थापित सत्ता, पावर ऑफ पॉपुलर विल वर्सेस अथॉरिटी। कार्लाइल दिखाते हैं कि कैसे आम लोगों की असली तकलीफ और गुस्सा, जिन्हें वो सैंस्कुलॉट्स कहते हैं, यानी वो गरीब लोग जो घुटना नहीं पहनते थे, बनावटी और खोखली सत्ता पर भारी पड़ते हैं।
सांस्क्लॉट्स,
हाँ, ये जन आंदोलनों की जबरदस्त और अक्सर बेकाबू ताकत को दिखाता है। वो जनता को एक कुदरती ताकत, एक आग के समंदर की तरह देखते हैं।
चौथा, क्रांतिकारी हिंसा का दुखद पहलू। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्लाइल क्रांति को जरूरी मानते हैं, लेकिन वो इसकी भयानक इंसानी कीमत को भी पूरी शिद्दत से दिखाते हैं।
हाँ, वो हिंसा को महिमा मंडित नहीं करते।
नहीं, हिंसा एक बार शुरू हो जाए तो अक्सर काबू से बाहर हो जाती है। कैसे नेक इरादे भी क्रूरता और पागलपन में बदल सकते हैं, आतंक का राज इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये एक तरह की चेतावनी है कि अच्छे मकसदों से शुरू हुई चीजें भी कितनी भयानक हो सकती हैं।
और पांचवां, महान व्यक्तियों की भूमिका और कोरी विचारधाराओं का खतरा, रोल ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल्स एंड डेंजर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजीज। कार्लाइल मानते थे कि मैराबो, दांतेन, रोबस्पियर, नेपोलियन जैसे खास लोगों ने इतिहास का रुख मोड़ा। ये उनकी ग्रेट मैन थ्योरी है।
लेकिन साथ ही
वो रोबस्पियर के उदाहरण से ये भी दिखाते हैं कि कैसे कठोर किताबी सिद्धांत जैसे आज़ादी, बराबरी, भाईचारा, जब इंसानी हकीकत, परंपरा और हमदर्दी को नज़रअंदाज करते हैं तो वो जुल्म और कत्लेआम का हथियार बन जाते हैं।
ये तो आज भी दिखता है।
हाँ, ये हमें आज भी, चाहे भारत हो या कहीं और, किसी एक व्यक्ति की अंधभक्ति और कट्टर विचारधाराओं के खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
कार्लाइल की भाषा वाकई बहुत दमदार है और कुछ बातें या जुमले ऐसे हैं जो जहन में रह जाते हैं। कुछ ऐसे यादगार विचारों पर बात करें।
हाँ, जरूर। एक तो उनका वो बार बार इस्तेमाल किया गया शब्द शैम, दिखावा, और उनका नतीजा शैम इज शैम एंड मस्ट गो, दिखावा दिखावा है और उसे जाना ही होगा।
मतलब जो नकली है वो टिकेगा नहीं।
हाँ, ये उनकी इस गहरी सोच को दिखाता है कि जो भी संस्था या व्यवस्था झूठी, नाइंसाफ और खोखली है, उसका मिटना तय है, उसे जाना ही पड़ेगा।
और रोबस्पियर के लिए उनका वो मशहूर वर्णन द सी ग्रीन इनकरप्टेबल, समुद्र जैसा हरा जिसे भ्रष्ट ना किया जा सके, ये जुमला रोबस्पियर के दोहरेपन को पकड़ता है। एक तरफ उसकी नैतिक शुद्धता, उसका सिद्धांतों पर अड़े रहना,
लेकिन दूसरी तरफ उसकी आम मानवीय ठंडक और बेरहमी।
बिल्कुल। कैसे एक आदर्शवादी इंसान एक आतंकवादी बन सकता है, ये वाक्यांश उसकी झलक देता है।
एक और मूल विचार जो उनके लेखन से निकलता है, उसे हम शायद ऐसे कह सकते हैं, क्रांति नरक की आग में लिपटी सच्चाई है। द रेवोल्यूशन इज अ ट्रूथ क्लैड इन हेल फायर। ये वाक्य क्रांति की भयावहता, नरक की आग को मानता है, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर देता है कि इसके दिल में एक सच्चाई और जरूरत थी।
ट्रूथ।
हाँ,
भयानक भी और जरूरी भी।
हाँ, उसके दोहरे स्वभाव को दिखाता है।
और ये विचार कि सभी क्रांतियों की शुरुआत तब होती है जब विश्वास मर जाता है।
द बिगिनिंग ऑफ ऑल रेवोल्यूशंस इज द डेथ्स ऑफ बिलीफ।
इसका मतलब है कि राजनीतिक या सामाजिक गिरावट से पहले एक नैतिक या आध्यात्मिक गिरावट आती है,
जब यकीन उठ जाता है।
हाँ, जब लोग अपने शासकों, अपनी संस्थाओं, यहाँ तक कि अपने आदर्शों में यकीन खो देते हैं, तभी क्रांति के लिए जमीन तैयार होती है।
और आखिर में नेपोलियन के आने से जुड़ा वो जुमला, द विफ ऑफ ग्रेप शॉट,
तोप के छर्रों की गंध।
ये अक्टूबर 1795 की उस घटना का प्रतीक है जब नेपोलियन ने भीड़ पर तोप चलवाकर विद्रोह कुचला था।
एक युग का अंत।
हाँ, ये उस पर का निशान है जब क्रांति का वो बेकाबू भीड़ वाला दौर खत्म होता है और व्यवस्था ताकत के दम पर लागू की जाती है। ये बातचीत के अंत और तलवार के राज की शुरुआत का इशारा है।
ये सब बातें तो दिलचस्प हैं, पर सुनने वाले सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये तो इतिहास हो गया, आज के जमाने में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों का क्या मतलब है? अच्छा सवाल है। मुझे लगता है पहला सबक तो सामाजिक बदलाव को समझने में मिलता है। कार्लाइल का विश्लेषण हमें समाज में उन खतरे की घंटियों को पहचानने में मदद कर सकता है जो बड़े बदलावों से पहले बचती हैं।
जैसे
जब संस्थाएं लोगों का भरोसा खो देती हैं, जब अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ जाती है, या जब हुकूमत करने वाले आम लोगों की तकलीफों से बेखबर हो जाते हैं। ये हमें समझाता है कि क्यों सुधार जरूरी हैं, ताकि हिंसक क्रांति की नौबत ना आए। और ये भी कि बदलाव अक्सर सीधा और आसान नहीं होता, बल्कि उथल पुथल भरा और अनिश्चित होता है।
दूसरा, नेतृत्व यानी लीडरशिप के समक्ष राजा लुई 16 की हिचकिचाहट और कमजोरी दिखाती है कि मुश्किल वक्त में ढुलमुल नेतृत्व कितना खतरनाक हो सकता है।
हाँ,
वहीं रोबेस्पियर का उदाहरण कट्टर विचारधारा के खतरों को उजागर करता है। ये नेताओं के लिए व्यावहारिकता, हमदर्दी और लचीलेपन के महत्व पर जोर देता है। सिर्फ सिद्धांतों पर अड़े रहना काफी नहीं, जमीनी हकीकत को भी देखना जरूरी है।
तीसरा, मीडिया और बातचीत की भूमिका। उस जमाने में क्रांति के पर्चे और अखबार थे, आज सोशल मीडिया है। कार्लाइल दिखाते हैं कि कैसे शब्दों और नारों से आंदोलनों को हवा मिलती है, लेकिन यही चीजें कैसे समाज को बांट सकती हैं और नफरत फैला सकती हैं।
ओ, मारात वाला उदाहरण।
हाँ, मारात जैसे पत्रकारों का उदाहरण दिखाता है कि कैसे मीडिया हिंसा भड़का सकता है। ये आज के दौर के लिए एक सीधी चेतावनी है कि हम जो पढ़ते, सुनते और शेयर करते हैं उसका क्या असर हो सकता है।
चौथा, सामाजिक न्याय और स्थिरता का रिश्ता। कार्लाइल का शायद सबसे बुनियादी संदेश यही है कि सामाजिक न्याय के बिना लंबे समय तक चलने वाली राजनीतिक स्थिरता मुमकिन नहीं है।
ये तो बिल्कुल सही है।
जब समाज का एक बड़ा हिस्सा नाइंसाफी और दुख झेल रहा हो तो उसे नज़रअंदाज करना आखिर में पूरे सिस्टम को कमज़ोर करता है। ये सरकारों के लिए एक सीधा सबक है कि जनता की शिकायतों को सुनना और उनका हल निकालना क्यों ज़रूरी है।
और हाँ, इसे हम व्यक्तिगत स्तर पर भी देख सकते हैं। असली होने का महत्व, यानी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। क्या हम अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में दिखावों के साथ जी रहे हैं या सच्चाई और ईमानदारी से?
सोचने वाली बात है।
कार्लाइल हमें अपनी मान्यताओं, अपने जीने के तरीकों पर सवाल उठाने के लिए उकसाते हैं। क्या हम वाकई वो हैं जो हम होने का दावा करते हैं? मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी सीख ये है कि आम लोगों के आंदोलनों में कितनी ज़बरदस्त ताकत होती है और वो कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं, और ये भी कि कैसे ऊंचे आदर्श भी बहुत जल्दी भटक कर क्रूरता में बदल सकते हैं। संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल और कितना ज़रूरी है।
और मेरे लिए कार्लाइल का ये मुख्य संदेश सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि समाज में नाइंसाफी और लीडरशिप में दिखावेपन को नज़रअंदाज करने के नतीजे ज़रूर सामने आते हैं, और वो अक्सर भयानक होते हैं। संस्थानों और नेताओं में सच्चाई और ईमानदारी सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि ये किसी भी समाज की स्थिरता की बुनियाद है।
जब ये खत्म हो जाते हैं?
हाँ, जब ये खत्म हो जाते हैं तो सब कुछ ढह सकता है।
और जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं, क्या इतिहास में बड़े बुनियादी बदलाव हमेशा इतनी बड़ी इंसानी कीमत चुकाकर ही मुमकिन होते हैं? क्या तबाही के बिना नया निर्माण नहीं हो सकता?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।